और जब प्रभु ने ऐसा कहा कि मेरा अपना कोई रूप नहीं, यह तो भक्त जिस रूप में मुझे देखना चाहता है वह रूप मैं धारण करता हूं, तो बड़ी चतुराई कर जाते हैं मनु महाराज। वह चतुराई क्या है? कहते हैं प्रभु ठीक है, मैं बताता हूं कि आप किस रूप में मेरे सामने आए, मैं यह बताता हूं कि किस सांचे में ढाल करके आप मेरे समक्ष प्रकट हूं। और बताते क्या है? जो सरूप बस सिंह मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप आपका भगवान शंकर के मानस में बैठा है, आपके जिस स्वरूप का चिंतन शंकर जी करते हैं, यही कारण मुनि जतन कराही, और जिस स्वरूप के दर्शन के लिए साक्षात्कार के लिए ये मुनिगण प्रयत्न करते हैं, तपस्या करते हैं। और प्रभु यह पूरा सांचा नहीं हुआ भला? मैंने अधूरा सांचा आपको दिया है, नहीं तो झट से आप मेरे सामने आ जाएं और कहने लगे कि तुमने कह दिया कि शिव के हृदय में जो रूप बैठा हुआ है। नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। बोलो बोलो मनु। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। यही चतुराई की कहा कि प्रभु सांचे का दूसरा भाग यह है कि आपका जो रूप काक भुसुंडी के मानस हृदय में हंस के रूप से विराजमान है, और आपके जिस रूप की सगुन और अगुन कहकर के प्रशंसा होती है, मैं उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। कितनी चतुराई की! भगवान शंकर हैं ज्ञानी, वे तो अपने स्वरूप में मग्न हैं, वे प्रभु का स्मरण अपने स्वरूप के रूप में करते हैं, वे तो ज्ञानी हैं। पर काकभूषुंड जी भक्त हैं, वे तो अपने हृदय मानस सरोवर में उस हंस के रूप में प्रभु का ध्यान धरते हैं, और इसीलिए चतुराई कर गए, चतुराई कर गए मनु महाराज। कहा कि प्रभु मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जिसको ज्ञानियों ने निर्गुण कहा है और जिसको भक्तों ने सगुण कहा है। अब बड़ी विचित्र बात आ गई, अब प्रभु प्रकट हो तो कैसे हो, कि सरगुण भी हो और निर्गुण भी हो, ये दोनों रूप किस प्रकार से एक साथ प्रकट हो, यह समस्या प्रभु के समक्ष आती है। जैसे श्री रामकृष्ण एक कथा कहते हैं, एक बड़ा चतुर व्यक्ति था, वैसे तो वह गांव का था, परंतु गांव का होते हुए भी भले दिखने में भोला भाला होता हुआ भी बड़ा चतुर था। आया शहर में, पहली बार उसने शहर देखा, घूमने लगा, रंगरेजों की दुकानें एक कतार में देखी, और वहां जाकर के देखने लगा कितने सुंदर सुंदर वस्त्र छपे हुए हैं, रंगे गए हैं। अचानक एक रंगरेज की दुकान के सामने छिटक करके खड़ा हो गया। उसे कुछ विचित्र सा लगा इस रंगरेज की दुकान में, और वह विचित्रता क्या थी, वह देखने लगा। एक व्यक्ति उस रंगरेज की दुकान में आया, उसने कहा देखो जी यह कपड़ा पीले रंग में रंगना है, रंग दो। कहा ठीक है, मैं इसे पीले रंग में रंग देता हूं, तुम 2 घंटे बाद आना और उसे तुम ले जाना। देखा उस गांव के व्यक्ति ने, रंगरेज ने एक डिबिया से एक चिमटी भर पाउडर निकाल करके उसने अपनी कड़ाह में जल में घोल लिया, और फिर वह जो हाथ में सफेद कपड़ा था उसे उसने उस कड़ाह में उस बर्तन में छपक दिया, तो वह कपड़ा पीले रंग का हो गया। उसने सुखाने के लिए डाल दिया। 5 मिनट बाद एक दूसरा व्यक्ति उसके पास आया। रंगरेज ने कहा कि क्या कपड़ा रंगाना है? कहा हां कपड़ा रंगाना है। यह कपड़ा है किस रंग में? कहा नीले रंग में, इस कपड़े को रंग दो। व्यक्ति चला गया। जब कह दिया दुकानदार ने कि तुम 2 घंटे बाद आकर के ले जाना, देखा अत्यंत आश्चर्य से उसी डिबिया को उस रंगरेज ने लिया, एक चिमटी भर पाउडर उसने निकाला, और फिर उसी कड़ाह के जल में उसने उस पाउडर को घोल दिया, कपड़े को छपक दिया, तो वह नीले रंग का हो गया, और सुखाने के लिए कपड़े को उसने डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने रंगरेज से कहा कि मेरा कपड़ा तुम लाल रंग में रंग दो। उस व्यक्ति ने पुनः उसी डिबिया को निकाला और एक चिमटी भर पाउडर लेकर के नया जल कड़ाह में लेकर के उसने पाउडर को घोल दिया, कपड़े को छपक दिया, वह लाल रंग में रंग गया और उसे उसने सुखा दिया। बड़ी विचित्रता लगी, और रंगरेज भी, उसने भी देखा कि एक कोई गांव का आदमी सामने खड़ा है दुकान के, बहुत देर से खड़ा, क्या मालूम नहीं देख रहा है। उसने बुलाया, क्यों जी बहुत देर से खड़े हो? क्या तुम भी कोई कपड़ा रंगवाना चाहते हो? उसने कहा कि रंगवाने की इच्छा तो नहीं थी, पर अब कुछ इच्छा हो गई है। क्या बात है? कहा कि अब तुम मेरी इस कमीज को ही रंग दो। उसने अपनी सफेद कमीज निकाल ली और कहा कि तुम मुझे इस कमीज को रंग करके दे दो। उस व्यक्ति ने पूछा कि किस रंग में रंगाना चाहते हो? तो गांव के उस भोले भाले दिखने वाले व्यक्ति ने कहा, जो रंग तुम्हारी उस डिबिया में है उसी रंग में इस कपड़े को रंग दो। तो मानो यहां पर वही बात है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो चतुर होता है प्रभु से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में ही पकड़ना चाहता हूं। तो यहां पर मनु महाराज हैं, और मनु महाराज से जब प्रभु ने पूछा कि मनु तुम मुझे सांचा दो और उस सांचे में मैं अपने को ढाल करके तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? मनु महाराज चतुराई करके कहते हैं कि प्रभु आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में विराजमान है, और आपका जो रूप काक भुशुंडी के मानस सरोवर का हंस है, और जिसकी प्रशंसा वेदों ने सगुण और निर्गुण के रूप में की है, मैं वही रूप देखना चाहता हूं। जो सदूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम आपका वही रूप देखना चाहते हैं प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए। अब प्रभु भी तो बड़े कौतुकी हैं। भक्त यदि अपने को बड़ा चतुर समझता है तो भगवान तो कम चतुर नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देखना ही चाहते हो। तो तुलसी लिखते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। आ गए प्रभु। और कैसे आ गए? तुलसी ने कितनी चतुराई से बात लिखी, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। मानो यहां पर जो भी ज्ञानी हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे वह भक्त हो, चाहे वह दीन हो, प्रत्येक के हृदय की आकांक्षा पूर्ण हो जाती है। जैसे ज्ञानी ने देखा प्रभु आकर के आविर्भूत होते हैं, तो ज्ञानी क्या कहता है, विश्ववास आ गए, यह सर्वव्यापी ब्रह्म आ गए, यह प्रभु आ गए। ज्ञानी की दृष्टि में वह ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, और जिस समय वह देखता है प्रभु को, उसे प्रतीत होती है कि सर्वव्यापी है। एक रूप यदि सर्वव्यापी हो तो क्या वह सीमित रूप हो सकता है? यह बड़ी विचित्र बात, विलक्षण बात है कि यहां पर ज्ञानी जब उस रूप को देखता है तो तुलसी कहते हैं, वह कहता है मानो विश्ववास आगे, सर्वव्यापी आगे। भक्त ने जब देखा तो कहा, भगत वत्सल, यह भक्त वत्सल प्रभु हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए आ गए हैं। और जिस समय दीन ने देखा तो कहा कि ये कृपा निधान आ गए हैं, अपनी कृपा से आई हैं। भला जीव की क्या सामर्थ्य है कि प्रभु को अवतरित करने के लिए बाध्य कर सके? अरे वे तो अपनी कृपा से आते हैं, तो प्रभु अपनी कृपा से आ गए। और जो कर्मी है, जो कर्म का सिद्धांत मानता है, कहता है कि कोई जो क्रिया होती है या कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है, तो कहते हैं ये भगवान आ गए, क्योंकि कर्मी तो भगवान को स्वीकार करता है उस रूप में जो कर्म का फल देता है, तो उसके लिए भगवान आए। ज्ञानी के लिए विश्ववास आए, भक्त के लिए भक्त वत्सल आए, और जो दीन है उसके लिए कृपा निधान आ गए। और कैसे आए? मनु ने कहा था कि आप ऐसे आइए जो स्वरूप भगवान शंकर के अंतर में विराजमान है, और जो आपका रूप काक भुशुंडी के मानस सरोवर का हंस है। आते हैं प्रभु, नील सरोदुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजय तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। ऐसे प्रभु आ गए, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। यहां पर तीन प्रकार से उपमा दी गई है कि वे कैसे हैं। मानो नील सरोरुह के समान है, नील कमल के समान उनका रूप है, मानो नील मणि के समान उनकी आभा और द्युति है, मानो अभी अभी यह जो नील नवल मेघ बनता है उसके समान उनकी ताजगी है, मानो तीन प्रकार से उपमा दी गई। इसमें नहीं जाना चाहते, नहीं तो आज का प्रवचन इसी में समाप्त हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि यहां पर कहा कि प्रभु ऐसे आ गए और नील आ गए। यह नील वर्ण क्या है? दोनों का मेल है, यह सगुण भी है और निर्गुण भी है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे जानते हो भगवान निर्गुण निराकार भी है और वे सगुण साकार भी है, इसीलिए उनका जो वर्ण है उसे नील वर्ण के रूप में चित्रित किया है। जैसे आकाश नील वर्ण है, जैसे समुद्र का जल नील वर्ण दिखाई देता है, जानते हो जब इसे हम दूर से देखते हैं तो उसका रंग नीला दिखाई देता है, जब हम समीप से देखते हैं तो उसमें कोई रंग नहीं दिखाई देता, जब तक हम आकाश को दूर से देख रहे हैं वह नीला दिखाई देता है, यदि हम पास चले जाएं आकाश में कोई रंग नहीं है। इसी प्रकार यह जो समुद्र का जल है दूर से देखते हैं तो नीला दिखता है, जिस समय हाथ में उठा करके देखते हैं उस समय उसका कोई रंग नहीं है। तो ये प्रभु भी कैसे हैं? ये जो नीले दिखाई देते हैं जब तक हम दूर से देखते हैं तब तक वे नीले दिखते हैं, जब हम समीप चले गए उनके स्वरूप का साक्षात्कार हमें हो गया तो दिखाई देता है वहां पर तो कोई नीलता नहीं है, वहां पर तो प्रभु अवर्ण है, वहां तो प्रभु अरूप है। यह अद्भुत सांकेतिक लक्षण है। जब तक हम दूर से प्रभु को देखते हैं ऐसा मान करके देखते हैं कि मैं अपने से बाहर प्रभु के दर्शन कर रहा हूं, तब तक तो वे नील रंग के दिखाई देते हैं। श्री राम नील वर्ण के कब तक हैं? जब तक मैं अपनी आंखों से अपने से बाहर उन्हें देखता हूं तब तक वे नील रंग के दिखते हैं, और जब मैं उनके स्वरूप का बोध अपने हृदय में करता हूं उनका कोई वर्ण ही नहीं होता, वे रूप से परे होते हैं। इसीलिए यहां पर वे कहते हैं, बड़ी सांकेतिक बात लिखते हैं गोस्वामी जी, कि प्रभु आए मनु की कामना पूर्ण करने के लिए। मनु ने चतुराई की थी तो प्रभु ने और भी अधिक चतुराई की। लो देख लो, प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं और तब उसके बाद मुस्कुरा करके अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रभु कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहुं बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। कहते हैं कि तुम मुझे महादानी समझ लो मनु, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुम पर, तुम जो चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो। और आप जानते हैं कि मनु महाराज ने क्या मांगा,
दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, मैं आपसे भला क्या दुराव कर सकता हूं प्रभु। अब प्रभु चतुराई कितनी समझ लेते हैं, वे समझ लेते हैं कि बड़ा चतुर है राजा, भक्त बड़ा चतुर है। कहता है कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं, तो आप पढ़ते हैं प्रभु कहते हैं,
आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, निपतवता न यहूब मैं आई।
अब मैं अपने समान कहां खोजने जाऊं, अब मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आ जाऊंगा। मानो यह जो हम कह रहे हैं कि यह जो भक्त का भगवान है या तुलसी के जो राम हैं, वे भक्त की कामना को स्वीकार करते हैं और आते हैं। यह तात्पर्य विवेचन का कि कल जैसे हमने देखा कि तुलसी यह कहते हैं कि प्रभु अवतरित होते हैं, वह जो सीढ़ी का दृष्टांत अवतरणिका अवतार का तत्व, और फिर इसके बाद कहा कि प्रभु मानो नाटक खेलते हैं, भगवान शंकर ने नाटक लिख रखा है, प्रभु आते हैं और उस नाटक को खेल करके जाते हैं, यह प्रभु की लीला है, यह श्री राम का अभिनय है। इस प्रकार तुलसी की जो राम कथा है वह श्री राम के अभिनय के रूप में हमारे समक्ष रखी जाती है। तो वेदांत का जो ब्रह्म है वह कैसा है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र, पर जो भक्त का परमात्मा है, भक्त का भगवान है, वह तो मानो भक्त परतंत्र है। भक्त जैसा कहता है वैसा वह करता है, वह रोता है, गाता है, नाचता है, किलकता है। हम पढ़ते हैं ना कि वह तो वहां की गोपियां वे ग्वालिने वृंदावन की थोड़ा सा छाछ देकर के नचाया करती थी श्याम सुंदर को, कि ले रे मैं तुझे देती हूं यह छाछ पी ले और तू नाच, तो जो छाछ पर रीछ करके नाचता है यह भक्त का भगवान ही नाचता है। वेदांत का ब्रह्म नाच नहीं सकता, वह निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म,
अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, परंतु जिस समय वह भक्त की कामना स्वीकार करता है तो भक्त जैसा चाहता है उसे नचाता है। दो बड़े सुंदर दृश्य आते हैं रामचरितमानस में कि तुलसी ने अपने राम को किस प्रकार भक्त के इशारे पर नाचते हुए देखा। भगवान शंकर जाते हैं वहां पर अयोध्या में, राजा दशरथ के महल में जाते हैं। अब शंकर जी तो ऐसे हैं उनको कोई देख तो नहीं पाता, परंतु वे आए हैं उस समय प्रभु छोटे हैं, 8 महीने के हैं, वे मानो घुटनों के बल मड़ैया लेकर के चलते हैं। और जिस समय वे आंगन में खेल रहे हैं भगवान शंकर आए कि चलें प्रभु के दर्शन कर लें, आते हैं, प्रभु ने देख लिया भगवान शंकर को, हंसते हैं, नेत्रों ही नेत्रों में उनकी बातचीत होती है। और प्रभु कहते हैं कि ये शंकर जी सब मैं ठीक कर रहा हूं, तो आपने नाटक लिखा है उस नाटक के अनुसार मैं सब अभिनय ठीक कर रहा हूं, तो कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप जहां पर अभिनय करने वाले हो वहां पर नाटक में किसी प्रकार की त्रुटि रह सकती है? अरे आप तो सारे जगत को नचाते हैं, पर यह तो आपने भक्त की कामना स्वीकार की है, बालक बनकर के आए हैं, इसलिए प्रभु आप नाच रहे हैं, आप उसी प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। नहीं शंकर जी, बात ऐसी है कि आपने तो नाटक लिखा, इसलिए मैंने पूछा, अगर कहीं पर मेरे नाटक के खेलने में कोई कमी हो, त्रुटि हो, तो उस कमी को मैं दूर कर दूं, ताकि मेरा जो अभिनय है वह सर्वांग संपूर्ण हो जाए। तो शंकर जी ने कहा कि प्रभु वैसे तो कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई खामी नहीं है, पर एक बहुत थोड़ी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। प्रभु ने कहा, कह लीजिए, वह कौन सी सामान्य सी बात है? कहा, महाराज जब मैंने यह नाटक लिखा था तब मैंने उसमें यह भी लिखा था कि जब मैं आपके दर्शनों के लिए यहां पर उपस्थित होऊंगा तब आपके शरीर में पीले रंग की झगुलिया होगी। अभी झगुलिया तो है परंतु वह पीले रंग की नहीं है, बस इतनी सी बात है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। पीत झगुलिया तनु पहराई, कहा कि बस यही मैंने नाटक में लिखा था कि आपके पास जब मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए आपके श्री अंगों में पीले रंग की झगुली विराजमान होगी। प्रभु ने कहा, इस त्रुटि को हम दूर किए देते हैं कि ताकि यह जो नाटक है सर्वांग संपूर्ण हो जाए। और प्रभु रुदन करते हैं, शिशु का रोना सुन करके माता कौशल्या दौड़ करके आती हैं, गोद में उठाती हैं। प्रभु हैं जो संकेत से माता को उस संदूक के पास जाने का आग्रह करते हैं। और प्रभु मानो कहते हैं कि इसमें से वस्त्र निकालो, मां समझ नहीं पा रही हैं आज मेरे लाल को क्या हो गया, अभी कुछ देर पहले तो मैंने इसे दूसरा कपड़ा पहनाया है। पर प्रभु मानते नहीं हैं। जब पीले रंग की झगली आई तो प्रभु किलक करके संकेत से कहते हैं कि यह मुझे पहना दो। मां ने पहना दिया, मां की गोद से वे मचल करके उतर पड़े और जोरों से मड़ैया लेते हुए आंगन में आए और कहा, शंकर जी इच्छा तो पूरी हो गई, आपने जिस त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया था वह त्रुटि तो अब हमने दूर कर दी, अब तो ठीक है नाटक सब प्रकार से। कहा, प्रभु सब प्रकार से ठीक है, बस भक्त की एक वासना की पूर्ति और कर दीजिए। क्या वासना है आपकी? पीत झगुनिया तनु पहराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। आप जिस समय जानू और पानी घुटनों और हाथ की सहायता से मड़िया लेकर के जब चलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है प्रभु, बस वही दृश्य एक बार देखने की इच्छा है। आपने पीली झगुली तो पहन ली, अब पीली झगुली पहन करके थोड़ी सी मड़ैया तो ले लें। प्रभु मड़ैया लेते हैं, भक्त की कामना को स्वीकार करके इस आंगन के छोर से उस छोर तक जाते हैं, वहां से लौट करके इधर आते हैं और बार बार शंकर जी की ओर देखते हैं, मानो वे सुनना चाहते हो कि शंकर जी कहें बस प्रभु बस प्रभु, पर शंकर जी हैं उस अरूप रूप को देख करके मानो अपने आप में मग्न हो रहे हैं, उन्हें ख्याल ही नहीं आता है कि प्रभु के घुटनों में दर्द हो रहा है। तब प्रभु नेत्रों ही नेत्रों में कहते हैं, अरे अब तो बस कराओ, कब तक मुझे नचाते रहोगे, कब तक मुझसे मड़िया लिवाते रहोगे, घुटनों में दर्द हो गया, हाथों में पीड़ा हो गई। और तब अत्यंत धन्यता का अनुभव करके भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं। एक दृश्य, थोड़ा सा समय बीता, अब काकभुशुंडी जी के मन में इच्छा हुई कि चले प्रभु का दर्शन कर ले। आए वे तो कौवे के रूप में हैं, अबाध गति है, जहां चाहते हैं चले जाते हैं। अब वे भी प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ने देखा और हंसे। काकभुशुंडी ने मानो नेत्रों ही नेत्रों में पूछा कि महाराज आप हंसे क्यों, मैं तो आया भक्ति भाव से आपके दर्शन करने के लिए, तो आपके अधरों पर यह हंसी क्यों आई? प्रभु ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले शंकर जी आए थे तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई नाटक तो आपने लिखा और खेलने वाला मैं बना, तो ठीक सब खेल रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है ठीक है। तो तुम भी तो आए हो, तुमने भी तो उस नाटक को पढ़ा है और सुना है। राजभूषण जी कहा हाँ सुना तो है। तुलसी कितना सुंदर संकेत देते हैं कि ये जो नाटक है शंकर जी ने लिखा उसके दो श्रोता थे, केवल दो लोगों को ही वह नाटक मालूम था।
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाखा।
यह तो कह दिया कि उन्होंने नाटक की रचना की और पार्वती जी को नाटक सुनाया। और दूसरे श्रोता कौन है? आप सभी जानते हैं दूसरे श्रोता कौन है।
सम्मुखीन जो चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंद दीना, राम भगति अधिकारी चीना।
वह उन्होंने उमा जी को तो सुनाया, परंतु उन्होंने काक भुसुंडी को भी उस नाटक का दान किया, यह जान करके कि ये राम के भक्त हैं इसलिए इस नाटक को सुनने के अधिकारी हैं। तो भगवान शंकर ने जिस नाटक को अपने मानस में रचा था श्री राम के प्राकट्य से पूर्व, उस नाटक के केवल दो श्रोता हैं, एक है उमा पार्वती जी और दूसरे हैं काकभुसुंडी। इसीलिए प्रभु जब हंसते हैं और काकभुसुंडी जी पूछते हैं कि आपकी हंसी का क्या कारण, प्रभु कहते हैं कि काकभुसुंडी तुमने भी उस नाटक को सुना है इसलिए बताओ तो सही, यह जो मैं नाटक खेल रहा हूं कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं है? भुसुंडी जी ने कहा प्रभु आपका नाटक खेलने में कोई त्रुटि हो सकती है? अरे आप तो बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं, आप भला नाटक करें और उसमें किसी प्रकार का दोष हो? अरे शंकर जी ने भी पहले ऐसा ही कहा था भुसुंडी, पहले तो कह दिया कि आप तो बहुत अच्छा नाटक खेल रहे हैं, पर जब मैंने खोद करके कहा कि देखो कोई त्रुटि हो तो बता देना, नहीं तो बाद में ऐसा मत कहना कि प्रभु वह छोटी सी त्रुटि रह गई थी, तब शंकर जी ने कहा कि पीले रंग की झगली होगी आपके शरीर पर, ऐसा मैंने अपने नाटक में लिखा था, जब मैं आपके दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो प्रभु झगली तो है पर वह पीले रंग की नहीं है, ऐसा कहा तो मैंने उस त्रुटि को दूर कर दिया। इसीलिए तुमसे कहता हूं तुमने भी उस नाटक को सुना है, कहीं थोड़ा सा भी मीन मेक हो तो बता दो, उस कमी को दूर कर दूं ताकि तुम कभी मुझ पर दोषारोपण नहीं कर सकोगे कि मैंने पूरी तरह से नाटक को नहीं निभाया। कहा प्रभु अब जब आप इतनी बारीकी से मुझे पूछ ही रहे हैं तो एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, उसे आप त्रुटि के रूप में मत लीजिए, पर हां यह बात तो है जब भगवान शंकर मुझे नाटक सुना रहे थे तो उसमें यह प्रसंग था प्रभु कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा, तो आऊंगा तो उस प्रसंग में ऐसा तो लिखा है कि आपके शरीर पर पीले रंग की झगली होगी, पर एक दूसरी छोटी सी बात और लिख दी है। अरे कौन सी दूसरी छोटी बात और लिख दी है? कहा
पीत झीनी झगली तन सोही।
वह जो झगली होगी ना पीले रंग की तो होगी पर उसका कपड़ा जरा झीना होगा। अभी आपने जो झगली पहनी है ये पीले रंग की तो है पर इसका कपड़ा जरा मोटा है। प्रभु ने कहा यह बड़ी विचित्र बात है, अरे कपड़ा थोड़ा सा मोटा है या झीना हो गया है इससे क्या अंतर पड़ता है? कहा नहीं प्रभु बहुत अंतर पड़ता है, ऐसा है आपने मोटे कपड़े की यह झगली पहनी है ना पीले रंग की, इससे आपके श्रीअंग का सौंदर्य दब गया है, अगर यही कपड़ा झीना होता तो आपके श्रीअंगों का नील सौंदर्य इस पीले के माध्यम से दिखता, अपूर्व शोभा की सृष्टि करता प्रभु, वह अपूर्व सौंदर्य का विस्तार करता, उस दिव्य सौंदर्य को देखने के लिए चित्त आतुर है, इसीलिए आपने बहुत सूक्ष्मता से पूछा, मैंने निवेदन कर दिया कि जिस समय मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा नाटक में लिखा है कि आपके शरीर पर पीले रंग की झगली तो होगी पर उसका कपड़ा मोटा नहीं होगा वह झीना होगा। प्रभु ने हंस करके कहा कि तुम्हें अगर श्री अंगों का सौंदर्य ही देखना है तो लो मैं अपने कपड़ों को उतार देता हूं देख लेना। कहा नहीं नहीं प्रभु यह आवरण उतारने का काम तो वेदांती करता है, बड़ी अद्भुत बात है, यह आवरण उतारने का काम वेदांती करता है पर भक्त आवरण को उतारने नहीं देता, वह आवरण को स्वीकार करता है, पर भक्त यह भी नहीं चाहता कि आवरण इतना मोटा हो जाए कि प्रभु का दिखना ही बंद हो जाए। दोनों को चाहता है। अद्भुत संकेत है, यह आवरण क्या है, यह पीतांबर है और पीतांबर भगवान की माया है। इसीलिए या तो आप भागवत पढ़ें तब, या आप रामचरितमानस पढ़ें तब, या रामायण पढ़ें तब, जो भगवान है वे पीतांबर धारी हैं, पीतांबर उनकी माया है। तो प्रभु अपनी माया का धारण करते हैं। तो यहां पर काकभुशुंडी का तात्पर्य यह है कि प्रभु आप तो अपनी माया रूपी पीतांबर को पहने ही रहते हैं, ओढ़े ही रहते हैं। ज्ञानी तो चाहता है कि आपका यह आवरण दूर हो जाए, पर जो भक्त है वह इस आवरण को स्वीकार करता है, इस माया को स्वीकार करता है प्रभु, पर वह यह नहीं चाहता कि माया का पर्दा इतना मोटा हो जाए कि प्रभु का दिखना बंद हो जाए। वह तो संसार को भी चाहता है, माया को चाहता है और प्रभु को भी चाहता है। यह चाहता है कि संसार के माध्यम से, इस माया के पर्दे के माध्यम से प्रभु दिखते रहें, इस अपूर्व सौंदर्य को भक्त स्वीकार करता है। यह जब काकभुशुंडी ने कहा, बड़ी सार्थक बात, कि यह जो भक्त है वह माया को भी चाहता है और भक्त प्रभु को भी चाहता है, और वह चाहता है कि माया के माध्यम से ईश्वर को वह सतत देखता रहे। यह जो संसार है भक्त के लिए प्रभु की लीला मालूम पड़ता है, इस संसार और नाम रूप के माध्यम से वह ईश्वर के चैतन्य को ही सबोर देख पाता है, यह भक्त की आकांक्षा रहती है। इसीलिए काकभुशुंडी ने कहा, पीत जीन झगुली तन सोही। तो कहा कि काकभुशुंडी, मैं तुम्हारे तर्क का कायल हो गया हूं, ठीक है, यह जो छोटी सी त्रुटि है, दोष है, उसको मैं दूर किए देता हूं। प्रभु रोते हैं, मां रोना सुनकर के आती हैं, प्रभु संकेत देते हैं उस संदूक की ओर जाने का, और आज मां को लगता है कि मेरे लल्ले को हो क्या गया है। बार बार वह संदूक के पास ले जाता है, इशारा किया, यह खोलो तुम और कपड़े निकालो, और मां एक पर एक कपड़े निकालती हैं, और जिस समय पीले रंग की झगुली झीने कपड़े वाली मिलती है, प्रभु मानो इशारे से कहते हैं, यह मुझे पहना दो। मां बलैया लेती हैं, आज क्या हो गया है, किसी की नजर तो नहीं पड़ी है। वे पहले की पीली झगुली निकाल करके यह दूसरी पीली झगुली पहना देती हैं, जो झीने कपड़े की बनी हुई है। और प्रभु आते हैं, अब काकभूषण से कहते हैं, अब तो हो गया, श्री अंगों का सौंदर्य जितना देखना हो, तुम कहते थे कि आवरण को भी स्वीकार करोगे, मुझे भी स्वीकार करोगे, और तुम चाहोगे कि आवरण के माध्यम से मुझे देखते रहो। भक्त यही चाहता है कि प्रभु कभी दृष्टि से ओझल ना हो जाए, यह संसार का पर्दा इतना मोटा ना हो जाए कि प्रभु का दिखना ही बंद हो जाए। और इसलिए पीत झीन झगुली तन सोही किलकन चितवन भावति मोही। कहा भुशुंड जी ने कि प्रभु इच्छा पूरी कर दी, अब थोड़ी एक वासना है प्रभु, किलकारी देते हुए आप जरा मरैया ले लें और पीछे फिर फिर करके मुझे देखते रहे, तो आपकी चितवन को देख करके और किलकारी को सुन करके धन्यता का अनुभव करूंगा। अब क्या करेंगे प्रभु, अब बन तो गए हैं भक्त के वश में, भक्त ने जैसा कहा, अब किलकारी देते हुए जाते हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके वे देखते भी जाते हैं टेढ़ी नजरों से, और काकभुशुंड धन्यता का अनुभव करते हैं। और वही बात कि अब बोलो सही, अब तो बस बोलो सही कि मैं मरिया लेना बंद करूं, और कब तक इस प्रकार देखते रहोगे। धन्यता का अनुभव करके काकभुशुंडी जी चले गए। तो श्री राम के संबंध में तुलसी की धारणा, वे आए हैं, भक्त जैसा चाहता है वैसा उन्हें नचाता है, ये प्रभु कार्य करते हैं, कैसे, अपनी इच्छा से नहीं, भक्त की कामना स्वीकार करके वे मानो भक्त की कामना को पूर्ण करते हैं, उनके भीतर में यह प्रेरणा आती है। और जहां पर ज्ञानी आते हैं, प्रभु आवरण को निकाल भी देते हैं, जैसे यहां पर भक्त आवरण को स्वीकार करता है इसलिए प्रभु ने आवरण रख दिया, पर जहां पर ज्ञानी आए, सनत कुमार ज्ञानी है, सनक सनंदन ऋषि ये ज्ञानी हैं, ये चारों बालक के रूप में महान ज्ञानी ऋषि हैं, और जब ये आते हैं तब प्रभु के पास संदेशा आया। उत्तरकांड में प्रसंग है कि ऋषि आ रहे हैं, और प्रभु ने जल्दी जल्दी भरत से कहा कि भाई जाकर के तुम अगवानी की व्यवस्था करो, वहां पर उद्यान में बगीचे में हम ऋषि की अगवानी करेंगे। प्रभु के मन में थोड़ा सा खटका तो लग गया, एक बार ये वैकुंठ में आए थे हमसे भेंट करने के लिए, और वहां पर द्वारपाल थे, द्वारपालों ने कुछ गलती कर दी और श्राप दे दिया, तो हमें यह करना पड़ा है, कहीं यहां पर भी तो द्वारपाल हैं, कहीं कोई भूल हो जाए और फिर से कहीं श्राप मत्थे लग जाए। इसलिए प्रभु ने उचित समझा कि चलो हम जाकर के वहीं पर बगीचे में अगवानी कर लें। और प्रभु गए, अगवानी करते हैं वहां पर ऋषि की, और फिर क्या करते हैं, देखी राम
मुनि आवत हरसि दंडवत कीन स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन।
अपना स्वागत पूछ करके फिर पीत पट है उतार लेते हैं, पीतांबर उतार करके प्रभु उनको बैठने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब कि जहां पर ज्ञानी आते हैं प्रभु अपने पीतांबर को अपने अपनी माया को अपने आवरण को उतार भी लेते हैं, पर भक्त इस आवरण को उतरवाना नहीं चाहता।